නමෝ භගවතේ වාසුදෙවාය ඔම් නමෝ භගවතේ වාසුදෙවාය ඔම් නමෝ භගවතේ වාසුදෙවාය නාරායණ නමස්කෘත්‍යං නරෝ ශෛව නරෝතමං දේවීං සරස්වතී ව්‍යාසං තතෝ ජායමදීරයේ නෂ්ටප්‍රායේෂු අභද්‍රේෂු නිත්‍යං භාගවත සේවයා භගවතී උතම ශ්ලෝකේ භක්තිර්භවති නෛෂ්ඨිකි ජය ග්‍රන්ථ රාශුන් භාගවතම් කි ජය. සෝ ජාමලක් ශ්‍රීමත් භාගවතම් ක චර්චා කර ස්කන්ධ පංචම ස්කන්ධ 16 श्लोक से कल कहाँ तक गए थे श्लोक 31 कि 32 33 तक गया था 33 तो 34 लिखा है क्या? अच्छा ठीक है. ये तु यह बा अंधावट कुशला गृहादिषु भूतानि निरुध्नन्ति यथा अमूत्र तेषु एव उपवेश्य සාගරණ බන්නේන දෝමන නිරුද්නන්ති. તો હમકો આદેશ મિલા કે 36મા શ્લોક તક પઢને કે લિયે આજ તો હમ લોગ ચર્ચા કરેંગે એ તીન શ્લોક કિંગ શાયદ વો સોચતે થે નર કા વર્ણા ઓર કોઈ ના કરે કિંગ બાકી આપ લોગ વૃંદાવન મે રહેતે હૈ ના इसके बारे में ज्यादा ना सुने इसलिए हम हमसे खत्म निपटना चाहते हैं नरक का वर्णन. तो इस श्लोक का अनुवाद भावार्थ इसमें प्रभुपाद की नहीं है, 35वां 36वां है प्रभुपाद की, तो हम लोग पढ़ेंगे. तो सुखदेव गोस्वामी नरक का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि यो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधकुएं, खेती या पर्वत से गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, ये मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं. वहां वे स्वयं अंधे कुएं में धकेले दिए जाते हैं, जहां विषैले धुएं से उनके दम घुटता है और वे घोर जतनाएं उठाते हैं. 35वां श्लोक. जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि में देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध, बगुले, कौए तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उनकी आंखों निकल लेते हैं. बहुत भयंकर है ना. तात्पर्यवंशी प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि गृहस्थ के घर उनका शत्रु भी पधारे तो उसे ऐसे विनम्रता से मिलना चाहिए कि वह भूल जाए कि वह अपने शत्रु के घर आए थे। घर आए अतिथि का विनम्रता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। यदि वह अभंजित है तो गृहस्थ को चाहिए कि उसके घूरे नहीं, क्योंकि जो ऐसा करता है वह मरने पर पर्यावर्तन नामक नरक में रखा जाता है, जहां गिद्ध कौए जैसे अनेक भयानक पक्षी उस पर सहसा टूट पड़ेंगे और उसकी आंखें निकल लेंगे। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, विशेष करके गृहस्थ की बात किए जाते हैं ना, तो उसका मतलब ब्रह्मचर्य नहीं सोचना चाहिए कि उनकी उनकी पर नहीं है करके। तो 36वां श्लोक में कहते सुखदेव गोस्वामी आगे, ये अंतिम नरक का वर्णन है 36वां श्लोक में, क्योंकि बहुत सुन चुके हैं अभी आप लोग नरक का। यो व्यक्ति इसी लोक में अथवा इसी जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि वह कितना धनी है और कोई इसकी बराबरी कर सकता है क्या। उसकी नजर टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है, अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगता है। अतः वह सदैव अति अभाग्य दृष्ट मनुष्य की तरह लगता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता है और यह नहीं जानता है कि चिंता मुक्त जीवन कैसे होता है। धन अर्जित करने उसका बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए वह जो पाप कर्म करता है उसके कारण उसे शुचिमुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां जमराज के दूत उसके सारे शरीरों को दर्जियों की तरह धागे से सील देते हैं। इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहे हैं, जब किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो जाती है तो वह निश्चय ही घमंड बन जाता है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य को यही स्थिति है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं होता है, जबकि क्षत्रियों के पास काफी धन संपदा होती है, किंतु वह भी केवल शास्त्र के आदेश अनुसार यज्ञ तथा अन्य सत्कर्म करने के लिए ही होता है। वैश्य भी कृषि गोपालन तथा व्यापार से ईमानदारी के साथ धन कमाता है, किंतु यदि शूद्र को धन प्राप्ति हो जाता है तो वह उसका बिना सूझबूझ के अपव्यय करता है या फिर संचय करता है जो उसके काम नहीं आता। क्योंकि इस युग में सुपात्र ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य नहीं है, अतः प्राय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कड़ौ शूद्र संभव। फलस्वरूप शूद्र मानसिकता से आधुनिक सभ्यता को भारी क्षति पहुंच रही है। शूद्र यह नहीं जानता कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के लिए धन का किस प्रकार उपयोग किया जाए। धन को लक्ष्मी भी कहते हैं और लक्ष्मी जो सदैव नारायण की सेवा में संलग्न रहती है, अतः जहां भी धन हो उसे भगवान नारायण की सेवा में लगना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में करें। यदि वह धन का उपयोग इसी कार्य के लिए नहीं करता है और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है तो अवैध संपत्ति के कारण उसे गर्व हो जाता है। वह धन वास्तव में श्री कृष्ण का है, जैसे कि भगवत गीता 5:29 श्लोक में कहा गया कि भगवान ने उन्होंने कहा कि भक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त यज्ञ एवं तप का वास्तविक भोक्ता मैं हूं और मैं ही समस्त लोग का स्वामी हूँ, अतः सब कुछ श्री कृष्ण का है, कुछ भी किसी और का नहीं है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है उसके श्री कृष्ण के लिए खर्च करना चाहिए। मनुष्य यदि ऐसा नहीं करता है तो वह अपनी झूठी संपत्ति के कारण गर्व से फूल उठेगा, अतः अगले जन्म में उसे दंडित होना पड़ेगा। प्रभुपाद की ओम। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरु व्यास कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद माताएं, तो विशेष करके बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके। इस वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवतम कथा वास्तविक श्रवण करने का ये शुभ अवसर आप लोग प्रदान किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आप सबके। तो वास्तविक ये जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं ये नारकीय लोक के वर्णन, इसी अध्याय में कभी कभी मन में बड़े विचार आता है कि ये नरक का वर्णन क्यों दिया जाता है भागवतम में, जबकि श्रीमद् भागवतम सारे वेदों की रसाले फल हैं, तो ये रसाले फल में ये नरक का कहाँ आ गया आप बीच में। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि रसाले फल तो इसमें है कि उसमें कोई दूसरी चीज है ही नहीं, लेकिन वास्तविक जो भागवतम तो ऐसे श्रीमद् भागवतम जो पुराण अमलम श्री चैतन्य महाप्रभु कहें उसमें तो कोई ये नहीं है, और उसमें रस ही रस है, लेकिन ये इस रस को कैसे आस्वादन करेंगे हम लोग वास्तविक उसको जानकारी के लिए ये हम लोग के लिए दिए गए हैं वास्तविक, ताकि नहीं तो हम लोग कहेंगे वास्तव हम लोग तो आस्वादन कर रहे हैं कुछ भी करके आस्वादन करते हैं, और किसी भी तरह कोई बिना सोच विचार करके उसमें सावधान नहीं रह के कभी कभी आस्वादन करते फिर उसका गलती हो जाता है। तो वास्तविक इसके रस का जो आस्वादन जब फल है वास्तविक उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इसलिए बीच बीच में परीक्षित महाराज का प्रश्न के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी जो रसालय फल रसमलय जो फल है उसको वास्तविक कैसे आस्वादन किया जाए, जबकि उसको ठीक से ढंग से उसको हम लोग चूसे उसका तरीका नहीं जाने से भी फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए ये परिकित महाराज जैसे परम भागवत हैं और उनके साथ श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत हैं, दोनों हैं, तो उनकी जो जिज्ञासा है परिकित महाराज को, क्योंकि ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे अध्याय के पहले से जैसे आप लोग देखे होंगे कि परिकित महाराज ये सोचते हैं कि लोग पाप क्यों करते हैं, दुख क्यों भोगते हैं लोग। तो वहां से सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं कि कैसे कर्म के अनुसार और विभिन्न प्रकार के तीन गुण हैं हम लोग, उसी के अनुसार कैसे पाप और पुण्य क्रिया करते हैं हम लोग, और पुण्य कर्म से करने से तो कुछ पुण्य लाभ मिलता है लेकिन पाप कर्म करने से क्या मिलता है। तो सुखदेव गोस्वामी आगे इसका वर्णन करते हैं ये नरक का। तो सुखदेव गोस्वामी वहां कहते थे कि कई कई मनुष्यों ने ये नरक का 21 नरक का वर्णन करते हैं और कई कई शास्त्र में उसके 28 में वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी एक्सट्रीम पॉइंट तक गए, 28 में हम नरक का पूरा वर्णन किया इसी कुछ श्लोक में पिछले, अभी हम लोग जो पढ़ रहे ये 26वें 27वें और 28वें नरक है ना, इसको पॉइंट किया ना आप नोट श्लोक नरक का वर्णन। तो ये जो तीन नरक हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक, इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे गृहस्थ की बात कहें श्रील प्रभुपाद जी, कोई भी अतिथि अभ्यागत आए तो उसको प्रेम से बुलाएं घर में। तो प्रभुपाद इतने देर तक दूर तक कहे कि कोई भी अतिथि अभ्यागत भी नहीं, अपनी कोई शत्रु भी आ जाए अपने घर में तो फिर भी उसको स्वागत करना चाहिए, संवर्धना करना चाहिए, ये तो बड़ा थोड़ा मुश्किल बात है। अतिथि अभ्यागत ठीक है, कोई ऐसे आ जाए तो उनको बुलाएं घर में, खाना खिलाए कुछ भी जो भी है अपने सक्षमता के सदृश, लेकिन कोई अपने दुश्मन कोई आ जाए, कोई शत्रु आ जाए, उसको कैसे ये करें घर में, कैसे उसको अभ्यागत ये करें, ये कभी कभी नामुमकिन लगता है हम लोग का। क्योंकि इसके कारण क्या है मालूम है ना, इसका कारण क्या है, क्यों हम लोग अतिथि को स्वागत नहीं कर सकते हैं? जो शत्रु उसको मानते हैं, शत्रु क्यों मानते हैं हम लोग? प्रहलाद महाराज सुंदर बात कहे ना प्रहलाद हिरण्यकशिप को सातवें स्कंद में, कि शत्रु इसलिए मानते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमसे कुछ बड़े हैं और अहंकार उसकी जड़ है, हम अपने को पराए और अपना क्यों सोचते हैं कि हम लोग का मन में अहंकार है, दूसरे से नहीं निपट पाते कि दूसरे को प्रेम नहीं करते, इसलिए कि अहंकार हमारे मन में कि हम बड़े हैं, इसलिए कि दूसरों को हमारे सामने नहीं देख पाते हम लोग, उसको भलाई उसको ये हम दे नहीं सुन पाते। लेकिन वैष्णव जन जो है जो भगवान के भक्त हैं तो वो तो उल्टा है, उनकी स्वभाव है, दूसरे लोग क्या करते हैं, जो लोग अपने मन में बहुत सारे अहंकार रखते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि दूसरे कोई किसके बढ़ोतरी हो जाए तो वो ईर्ष्या से जलता रहता है अहंकार से, और वो हमेशा सोचता है कि अपने जो कंपटीटर हैं उनको कैसे भी ये हो जाए, और उनका कुछ थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर गया जलने। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ये स्वभाव होना चाहिए, ये पर दुख है दुखी, दूसरे का दुख कोई दुख पड़ता है तो ये दुख करते हैं खुद, क्योंकि इसी दुख जब ये स्वभाव हम लोग का मन में नहीं आता है तो फिर हम लोग भगवत भक्ति आचरण जो करते हैं, जो कि दिनचर्या हम लोग ये करते हैं, तो फिर सोचना है चाहिए कि वास्तविक हम लोग उसको ठीक से कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। इसे प्रभुपाद जी ये जो बात कहें, शत्रु को अपने घर में मित्रवत देखना चाहिए, तो प्रभुपाद अपने मन से ऐसे नहीं कह दिए, ये बहुत पुराण में वर्णन है, जैसे रामायण के वर्णनों में आप लोग देखे हैं और उससे पहले भी हम लोग देखे हैं बहुत बड़े शत्रु थे विश्वामित्र जी के। कौन शत्रु थे? वशिष्ठ जी, है नहीं? वशिष्ठ जी उनके शत्रु थे विश्वामित्र के। क्या कारण था उनका कि वशिष्ठ, ये विश्वामित्र तो पहले राजा थे, क्षत्रिय थे, वशिष्ठ तो ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी का पुत्र है। ये वशिष्ठ जी इतने महान थे, ब्रह्मा जी का पुत्र होने के नाते ये हमेशा सोचते थे कि वास्तविक कैसे भगवत प्राप्ति हो जाए, जीवन का लक्ष्य यही है। तो ब्रह्मा जी उनको बोले कि तुमको भगवत प्राप्ति करने के लिए ये सूर्य वंश जो आएगा होगा इक्ष्वाकु वंश में तुमको पुरोहित पुरोहितगिरी करना पड़ेगा। अरे वशिष्ठ जी बोले ये तो बहुत निम्न कार्य है, आप बताएं। पुरोहितगिरी करके कोई भगवत भक्ति नहीं प्राप्त किए, भगवत प्राप्त नहीं किए, तो आप ये सबसे नीचे ये कर्म क्यों कर रहे? क्योंकि पुरोहितगिरी करना इतना सहज बात नहीं है, और जजमान का कुछ भी हो जाए तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी। आप लोग तो जानते हैं आजकल ब्राह्मण के लिए कैसे करते हैं, अपने के लिए तो बहुत सारे ये करते हैं, ब्राह्मण के लिए कुछ भी खरीद ले आते हैं। तो इसलिए पुरोहित करने के लिए वशिष्ठ जी मना कर दिए थे पहले, लेकिन ब्रह्मा जी उनको बोले कि यही पुरोहित गिरी करने से तुमको भगवत प्राप्ति होगा। तो अंत में क्या हुआ, भगवान श्री राम जी आए उन्हीं वंश में, और उनकी भी गुरु बने वशिष्ठ जी। कितना अभाग्य, नहीं भगवान का कोई गुरु बन सकता है क्या? तो वशिष्ठ जी इतने सादा सीधा आदमी ये थे। तो ये तो आप लोग जानते हैं ये कहानी कि क्षत्रिय होने के नाते ये तो गए थे उनके आश्रम में, देखे तो बहुत सारे उनका अभ्यर्थना किए वशिष्ठ जी, तो उनको ईर्ष्या आ गया। अरे हम राजा हैं और ये राजा नहीं है, इसे हमारा आतिथ्य से ये किया, सब किया, वो किया। कारण क्या हुआ कि उनके पास कामधन गाय है, अरे ये तो राजा का होना चाहिए, अरे राज्य के राज्य में जो चीज संपत्ति है तो राजा का ही है, तो उसको जबरदस्ती लेने लगे। तो लेकिन कामधेनु गाय तो गए नहीं, तो लोग लेकिन क्या कि बस ये विश्वामित्र जी इतने बड़े राजा थे, सब शत्रु को उनको मार दिए, संहार कर दिए। ये कामधेनु गाय से सब सैन्य भी प्रकट हो गए, तो और उनका ईर्ष्या बढ़ने लगा, उनके घमंड तथा। तो बोले कि अरे ये जो क्षत्रिय पन है ये तो बेकार की चीज है, ये ब्रह्म पद सबसे बड़ा है, नहीं नहीं ये ब्रह्मर्षि होने के नाते इनके पास ये शक्ति है, हमारा इतने सारे शक्ति सब व्यर्थ हो गया। तो ब्रह्मर्षि होने के लिए गए, तो आप तो जान चुके कितने साल, 60,000 साल तक तपस्या किए। उसके बाद भी फिर बीच में बहुत सारे टूटा फूटा उनका ये हुआ, फिर भी उनका मन में इतना बड़ा दृढ़ संकल्प हो गया था ब्रह्मर्षि बन के रहे। लेकिन ऐसे वैसे नहीं प्राप्त किए, ये वशिष्ठ जी कृपा से उनका प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में कहते वास्तविक उसमें आप देखेंगे। तो बहुत बार तपस्या किए, उनकी तपस्या तो टूटा वो बीच में, तो तपस्या प्राप्त करके अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ठीक है अभी तुमको सैंक्शन करते ब्रह्म पद तुमको प्राप्त होगा। तो आए वशिष्ठ जी के पास, लेकिन वशिष्ठ जी नहीं माने, अरे आप कहां ब्रह्म तो ये हो है। आप राजर्षि हैं, आप ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते हैं। तो फिर गए ब्रह्मा जी के पास, अरे ये तुम नहीं मान रहे, जो मानने वाला वो नहीं मान रहे। तो ब्रह्मा जी बोले तो हम तो सर्टिफाई कर दिए ना, तो फिर क्यों आप ये कर रहे हैं, आपको आप तो ब्रह्मर्षि हो गए, ब्रह्मा जी सर्टिफाई किए। लेकिन वशिष्ठ जी जब नहीं माने तो इनके मन में और क्रोध बढ़ गया, इनके मन में क्रोध बढ़ के तो एक बार सोचिए अपने चिंता के मन में कि वशिष्ठ जी जो आश्रम में रहते हैं उसी आश्रम के रात में जाके बैठूंगा उनका पेड़ का ऊपर, और सुबह जैसे उठ के आएंगे दिनचर्या करने के लिए नहाने के लिए जाएंगे, उनको वहीं पे खत्म कर दूंगा खड़ग में, बस खत्म। तो वो क्यों ब्रह्मर्षि होंगे हम जब नहीं बन सकते हैं? तो विश्वामित्र जी आके बैठे वहां पे, विश्वामित्र जी जब रात में बाहर बैठे वहां पे, तब सुबह हुआ तो वशिष्ठ जी की पत्नी उनको पूछे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, उनको क्यों आप उनको ब्रह्मर्षि कर स्वीकार नहीं करते हैं? तो वशिष्ठ जी ने क्या किए, वशिष्ठ जी ने इनका गुणगान करने लगे विश्वामित्र की। इतना देखिए कितना साल तपस्या किया, ये कोई संभव कोई ये चीज है? इतने बार भी तपस्या में अनर्थ हुआ फिर भी देखो इनका ये नहीं छोड़े, ये वास्तविक तो बहुत गुण है उनकी, तो उनका गुण बखाने लगे वशिष्ठ जी। तो उसको कौन सुन रहे थे? विश्वामित्र जी सुन रहे थे उनके घर के सामने। तो वही जो खड़ग लेके गए थे, जैसे वशिष्ठ जी स्नान करने के लिए आए तुरंत तो पेड़ से निकाल उतरे, वही उनके शरण में यहां शरण किए विश्वामित्र जी। तो वशिष्ठ जी बोले अभी आप ब्रह्मर्षि हो गए, यही कमी था आपका मन में। वास्तविक हम लोग देखते हैं ये तो उसी पुराण की कहानी, आपका ये वृंदावन में भी कहानी घटना है, ज्यादा देर नहीं, ये 200-250 साल की भी है। आप लोग को वृंदावन वासी लोग जानते होंगे लाल बाबा की मंदिर है ना, उसकी कहानी जानते हैं ना आप लोग, ब्रज में रहते हैं क्या भाई आप नहीं जानते? ये लाल बाबा भी बहुत बड़े सेठ थे बंगाल की, अंग्रेज जमाने में इतने बड़े ये थे, मतलब सेठ थे ये, वहां के बंगाल के जो नवाब पहले थे उनका कभी कभी कमी पड़ता था धन का, इनसे उधार लेते थे, इतना बड़े आरोपपति थे ये लाल बाबा जो मंदिर जो आप देख रहे हैं। लेकिन हर कोई बड़े आदमी है तो इनके तो कंपटीटर होते रहते हैं, क्योंकि जो ईर्ष्या है इसके बारे में हम कह रहे हैं कि वास्तविक ये जब हमारा मन से नहीं जाता है तो ये कैसे आदमी को रुकावट करता है अपने ये प्राप्ति करने के लिए, अपने जिंदगी का जो लक्ष्य है वास्तविक पूर्णता प्राप्ति करने के लिए कैसे ये ऑब्स्टेकल रहता है। तो लाल बाबा इतने बड़े ये थे, तो क्या हुआ था इनकी ये कंपटीटर थे और इनका बीच में हमेशा कंपटीटर, क्योंकि बीच बीच में तो दो नहीं रह सकते शहर कोई जंगल में बड़े, नहीं हमेशा ये टकराव होता था ना। तो दूसरे सेठ जी थे इनका बीच में हमेशा कुछ ना कुछ बात में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, ये इसको मतलब घर का नौकर चाकर भी सब उसके मतलब इसके घर में नहीं रखते थे, वो उसको भी नहीं रखते थे, इतने तक उनके बीच में ये हो गया था। तो एक बार क्या क्या ऐसे करके 50-60 साल ऐसे चला गया, बुढ़ापा आ गए। लाल बाबा एक बार क्या कर रहे थे, वो घर में बैठ के हुक्का पी रहे थे, अपने हुक्का पीते थे, जानते हैं ना आप लोग यहाँ राजस्थान इसमें तो आप लोग जान देखे होंगे। तो उनका घर में जो नौकरानी था वो किसी काम के लिए बाहर गई थी, तो उनकी जो असिस्टेंट थी उनके बच्ची जैसे, तो उनके बोल के गए थे कि दिन में सूरज आएगा तो उसको तुम कंडे सेक लेना, कंडे जैसे गोबर का ये बनाते हैं ना उसको लगा देना फिर दीवार में ये करके। तो शाम हो गया तो आई वो नौकरानी वापस आए तो उनको पूछी कि यार कंडे सेक ये किया ना नहीं किया, बोले कि नहीं हम नहीं कर पाया। तो उसने बोली कि अरे अब तो दिन बीत गया अभी क्या होगा, कल के लिए खाना ये के लिए क्या होगा। तो उसको ये लाल बाबा सुन रहे थे, तो सोचे अरे अभी हमारा जिंदगी में क्या हो गया, जिंदगी भर 50 साल ऐसे लड़ाई झगड़ा में चला गया, अब तो दिन गया फिर अभी क्या होगा, फिर कुछ नहीं किया काम, इतना धन संपत्ति मिला लेकिन धन संपत्ति सब किस में खर्च हुआ व्यय हुआ, लड़ाई झगड़ा में ऐसे ये हो गया। तो उनका मन में फिर बीच में कुछ धन पुण्य तो नहीं किए, तो लोग कहते कि ठीक है वृंदावन में जाके कुछ भगवान की सेवा करने से इसमें कुछ पुण्य लाभ होगा, तो ठीक है करके घर परिवार सब छोड़ के आ गए वृंदावन। वही एक ही बात कर, कभी कभी हम लोग सोचते घर में नौकरण चाकरण ये जबकि कोई छोटी बात है लेकिन कितना गहरा अवसर पड़ा उनका ऊपर में। वो सोचे कि अभी तो दिन चला गया अभी क्या होगा फिर अपना जिंदगी का, अगले जन्म में क्या होगा, हम कोई कुत्ते बिल्ली हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है इसका। तो वृंदावन में आए, ये जो लाल बाबा मंदिर आप देख रहे थे उसको बनाए, कितने भव्य मंदिर है। जितने अपने पैसा था ये सब ये करके इसको बनाए, तो उसको प्रतिष्ठा करने के लिए अपने गुरु को बुलाए, अपने जो गुरु जी थे वृंदावन के बाबा थे। तो गुरु बोले कि नहीं नहीं तुम्हारा पैसा थे तो धन कमाए तो सभी ये पाप के पैसा है, इसमें प्रतिष्ठा करने के लिए हम नहीं जाएंगे। तुम जब जाके भिक्षा करके धन कमा के लाएगा तब जाके प्रतिष्ठा होगा, लेकिन ये मंदिर तो तुम्हारा वो पैसा से बना हुआ है, ये इसी पैसा से। तो लाल बाबा छवि जानते थे, वृंदावन में जो सब लगते कितने बड़े ये सेट थे ये। तो लाल बाबा का अभी बड़ा परेशान आ गया घड़ी। गुरुजी बोले कि प्रतिष्ठा नहीं करेंगे भिक्षा करके नहीं लाने से ये। तो भिक्षा करने के लिए गए, कोई भिक्षा उनको नहीं दिए। सभी लोग सोचे कि अरे ये शायद कोई ये कर रहे हैं लाल बाबा, अरे ये जो दूसरों को भिक्षा देते थे ये कहां भिक्षा मिलाने के लिए आए। सभी बोले कि शायद हमको कुछ मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे करके कोई नहीं भिक्षा दिए। दो तीन दिन कला चला गया, दो तीन दिन तक भूखा रहे। कि गुरु जी बोले प्रसन्न नहीं होंगे तो खाना बंद है, भिक्षा लग जब तक नहीं आए। तो गुरु जी को परेशान आके बताया, गुरु जी बोले ठीक है यहां से तुम्हारी जानकारी तो थोड़ा दूर चला जाओ, दूर में तो तुमको कोई नहीं जानते ना। तो बहुत कष्ट करके लाल बाबा फिर दूर गए, गांव के कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा भिक्षा लेके आते थे, उसमें खाना पका देते, अपने गुरु को समर्पण ये करते थे, अर्पित करते थे उसमें। गुरु बोले ठीक है अभी थोड़ा हुआ तो फिर, लेकिन पूर्ण रूप में तुम अभी शोधन नहीं हुआ तुम्हारा। तो अब लाल बाबा बोले कि अभी तो कर देना चाहिए, तो अब भिक्षा लेके आए। नहीं नहीं तुम्हारा पूरा शोधन नहीं हुआ, तो कैसे फिर पूरा शोधन होगा। नहीं जिस तुम्हारा जो कंपिटेटर था ना उसके घर से जब भिक्षा लेके आएगा तब जाके तुम्हारा मंदिर प्रतिष्ठा होगा। देखिए और उसी टाइम आप लाल बाबा के मंदिर के पास एक कोठी देखा ना, वहां पे भी एक कोठी है, वो उनका कंप्यूटर बनाया था वो कोठी लाल बाबा को मंदिर को देख के। तो अभी तो बड़ा मुश्किल है, अभी समस्या में आ गया, इनके पास कैसे जाएं, जब बचपन से इनके साथ इतना शत्रुता है उसके पास कैसे जाएं भिक्षा लेने के लिए। और भिक्षा जब नहीं लाएंगे तो फिर गुरु जी प्रसन्न नहीं है, गुरु जी मंदिर प्रसन्न नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं होगा। तो बड़ी ये करके अपने पूरा भिखारी वेश साजे, बोले कि दिन में जाते थे कोई देख देगा, तो रात रात उठ के चले उनके घर। सुबह सुबह जैसे भोर 4 बजे मंगला आरती का टाइम में जाके पहुंच गए उनके घर के गेट का दरवाना थे ये गेट कीपर सिक्योरिटी तक तो सब जानते हैं ना उनको पहले से इतना से। तो सिक्योरिटी पहले देखा था अरे ये तो लाल बाबा तो नहीं है, आगे पीछे उनका सिक्योरिटी चेक किया, अरे वही तो है लाल बाबा। तो उसे कि ये SMS में क्यों आ गया, शायद कुछ दूसरा मंत्रणा किया होगा हमारा सेट को ठकने के लिए, क्योंकि उनके तो रिश्ता ही ऐसा ही पहले से। बोला कि नहीं नहीं देखो एक मेहरबानी करो हमारा ऊपर, हमको भिक्षा चाहिए। किसे भिक्षा चाहिए? आपके सेट से। हमारे सेट से आप कोई गलत नहीं कर रहे। तो सिक्योरिटी को ये समझ में नहीं आया, बेचारा सुबह सुबह जाके मंगलारती में सेठ जी को उठाया। तो वो जैसे सुने तो वो तो विश्वास ही नहीं किए, क्योंकि जब 50 साल के अंदर तक ऐसे लड़ाई झगड़ा जिसके साथ चल रहा है और जिसको शत्रु मानकर बैठे थे जिंदगी भर, और वो आदमी आएगा इनके घर में भिक्षा लेने के लिए, ये कोई संभव की चीज है? इसे कोई भी नहीं सोचता की सत्य बात है। बोले कि सिक्योरिटी ठीक कर रहे कि गलत कर रहे, अपने घर की छत का ऊपर चढ़े तो देखे अरे वही तो है लाल बाबा तो है। तो वो देखकर उनका मन में पिघल गया थे, जिसके साथ में इतने सालों तक इतना बैरी मित्रता भाव ये शत्रुता भाव रखा था अपने मन में, देखिए वो हमारे घर में भिक्षा लेने के लिए आए हैं। उसी विचार को ये भाव को देख के इनकी ये वेशभूषा को देख के वो सेट भी ये हो गया, चेंज हो, परिवर्तन हो गया। और वह भिक्षा क्या लेके आएगा, आके तो पूरा रो रो के उनके आके गले लगाया, उनको आलिंगन किया। जैसे प्रभुपाद यहां कहते थे, जब भी कोई शत्रु अपने द्वार में आ जाए तो वास्तविक यह वैष्णव का सदाचार में हम लोग सीखते हैं। वास्तविक हमारा शत्रु है नहीं कोई, शत्रु तो जब है कि हम खुद ही है शत्रु। कौन है शत्रु उसका? मैं हूं ना शत्रु, वही है, मैं ही शत्रु है। कि वास्तविक मैं कुछ हूं, वही जब हम लोग देखते हैं दूसरे के, फिर उसका पास तो नहीं हो सकता है, हमारा पास होना चाहिए, तो फिर शुरू हो जाता है। तो भगवान इसलिए भगवद गीता में कहते हैं कि इसी को निकालना चाहिए अपने मन से। इसको जब जड़ से हम लोग निकालेंगे अपने मन में, मन से जो रहता है मैं कुछ हूं, अपना मन में जो अहंकार रहता है, तो उसको जब हम जड़ से निकालेंगे तब जाके हम लोग भक्त बन सकते हैं। तो यहां पे तो जैसे नरक की बात बनाने के लिए, नरक में तो उनको दंड मिलेगा, लेकिन हमारे भक्त लोग के लिए क्या चर्चा करना चाहिए उसमें? तो भक्त लोग सोचेंगे तो हम लोग तो ऐसे नहीं करते हैं, तो हमारा ये चर्चा का क्या विषय है? भक्त लोग के लिए ये शिक्षा देते हैं वास्तविक सुखदेव गोस्वामी। हम लोग ये सोचना नहीं चाहिए कि ये दूसरों लोग के लिए, दूसरे लोग तो ऐसे कार्य करते हैं नरक में जाएंगे, हम तो भक्ति करते हैं भजन करते हैं, हमारा कोई नरक जाने के लिए चांस नहीं है, सब सोचते हैं। लेकिन हमारा मन चांस नहीं है, कैसे हम लोग को उसको गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी कार्ड लिख के रखा है क्या आप? जैसे कोई सामान करने से गारंटी कार्ड मिलता है ना आजकल, कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग को भगवत भक्ति में सफलता लाभ कर सकते हैं जब तक इसको हम लोग जड़ से नहीं कुछ। इसलिए प्रभुपाद ये तात्पर्य में जब हम पढ़ रहे थे याद कर रहे थे कि प्रभुपाद क्यों ऐसे बोले कि देखिए, जबकि ये बहुत नामुमकिन लगता है कि कोई शत्रु अपने घर में आए उसको कैसे आदर करें आप, लेकिन पहले इसलिए हम लोग जो भक्ति आचरण करते हैं हम लोग सोचना चाहिए कि शत्रु कौन होता है, पहले देखना चाहिए उसको। जब पर्यालोचना हम लोग करेंगे तो वास्तविक कोई है नहीं शत्रु। जब भगवान कहते हैं नामे दृष्टि नामे प्रिय, तो हम क्यों आगे, हमारा क्यों प्रिय है और दोषी है? समह सर्वबुद्धि से भगवान खुद कहते हैं ना, तब जो उसी भगवान का हम लोग जो भक्ति करते हैं, भक्त बनते हैं, भक्त कल्याण के लिए योग्य मानते, तो हम क्यों फिर द्वेष रखते हैं? तो हमारे मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, तो द्वेष नहीं आएगा तो फिर शत्रु कहां से पैदा होगा? शत्रु पैदा नहीं आता, दूसरे को मित्र उसके सामने उसको ये कर सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये चीज प्रभुपाद हम लोग वास्तविक श्रीमद भागवत में हर पन्ने में ये दिए गए कि वास्तविक हम लोग कैसे भक्ति में जो श्रीमद भागवतम का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये 36वां श्लोक में जैसे दिए गए, जो व्यक्ति इसी श्लोक में अथवा इसी जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि वह कितना धनी है और कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता है, तो उसकी नजर इतना टेढ़ी हो जाती है कि वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति या अपने के लिए, देखिए कितने सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं कि वास्तविक हम बचे तो वैसे दुनिया में दुनिया बचे, ये हमारा आजकल नीति है ना, कुछ भी करो ये भी करो, कोई दूसरे लोग कोई ये हो जाए हमारा तरफ से ये के लिए, लेकिन हम बचाए जो बस, क्या एक कहावत है, आप बचे तो अपने बचे तो बाप का नाम है ना, जैसे कोई कहते हैं, दूसरे कुछ हो जाए लेकिन वास्तविक जो भक्तजन होते हैं वो अपने के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि दूसरों को कैसे कल्याण किया जाए। अपने बात में जो सोचते हैं तो वास्तविक ये स्वच्छाचारी हो गए ना, और दूसरे के बात जो सोचते कि वास्तविक वही है वास्तविक भगवान की भक्त हैं। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, महाराज शिव की बात हम लोग पढ़ते थे, जो देखिए खाली दो कपट तो ये के लिए देखिए, एक कपट वह अपने शरण में आ गया तो देखा अपने के शरीर को किसका लोभ नहीं है, लेकिन महाराज शिव ने क्या किए, वो कपट को सुरक्षा प्रदान किए तो क्या हुआ, अपने शरीर से मांस देने लगे। अरे कोई सोचता है कि अरे हमारा हम बचने से ये होगा ना, अपने शरीर से मांस जाएगा तो क्या होगा, हमारा तो यही सच चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, धर्म क्या करेंगे। लेकिन महाराज भी ऐसे नहीं सोचा, अपने शरीर से एक एक करके पल्प दे, जब तक फिर भी उसका पल्ला भारी हो रहा था कपोत का, तो क्या किए, उसी कपोत के लिए खुद जाके पल्ला इसमें बैठ गए तराजू में। देखिए अपने जीवन को भी बाजी लगा ये किए, जो कि सबसे हमारा प्रिय है, इसी के लिए हम लोग मरते रहते दिन रात भर, उसी शरीर को भी ये नहीं रखे महाराज से भी ने। और रंती देव की बात भी हम लोग सुन रहे हैं इसमें भागवतम में, भागवतम पर्व में क्यों दिया गया ये सब, ये सब जैसे कहानी नहीं है वास्तविक, कोई कहते कि नहीं ये तो कोई काल्पनिक कहानी है, अरे कहानी नहीं है वास्तविक, भगवान की भक्ति करने के लिए जो उपादेयता है वास्तविक, जो उपयोगी है भक्ति करने के लिए वो सब दिए गए उसमें। उसको हम लोग जब पढ़ेंगे, उसको हम लोग याद करेंगे, तब जाके क्या होगा, धीरे 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 हम लोग भगवत भक्ति करने के लिए जो कुछ रुकावट है उसको पार करने के लिए ये एक सहारा मिलेगा, हम लोग स्टेपिंग स्टोन मिलेगा, नहीं तो कहां भक्ति आ रहा, हम कहां हैं बतावी, बस तो यहां तो अपराध होगा करने के लिए, आप लोग ब्रज में रहते हैं, हमारा अंदर हम देखते वास्तविक हम ये करते तो हमारे में कोई नहीं है भक्ति, भक्ति कहां है, हम कहां है, हम कितने दूर है उससे, वो कहां कर सकते हैं भगवान की भक्ति। तो रंती देव ने क्या किए थे, कितना दिन फास्टिंग किए थे, 2 महीना तक फास्टिंग किए थे, नहीं एक साल तक ना, जो भी है, तो इतना दिन तक उपवास रहने से फिर जब उपवास का तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उनको प्रसाद लेने के लिए जब आए तो क्या किए रंती देव ने, क्योंकि हम लोग क्या अपने के बारे में बहुत सोचते हैं ना, जैसे अतिथि अभ्यागत तो यहाँ प्रभुपाद जी के बारे में कहे, तो रंती देव ने क्या किया, तो अरे प्रसाद तो राजा थे खुद, कोई छोटे आदमी तो नहीं थे, ऐसे हुए साधारण मनुष्य तो नहीं थे, तो अपने राजमहल में बैठ के तो आराम से खा सकते थे ना, अरे इतना दिन के बाद आया खाने के लिए, तो हमारा ऐसा हालत तो होगा, तो निजड़ा एकादशी एक दिन आता है तो हर दिन देखते हैं कितना बजे आएगा उपारण का टाइम, कब उपारण का टाइम होगा, जाके हम लोग प्रसाद, दूसरा कोई ले ना ले कोई चिंता नहीं है, अरे प्रसाद तो सबको मिलेगा, प्रसाद तो होगा, नहीं सोचते हम लोग, हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते कभी। तो रंती देव ने पहले जाके ये किया, जिज्ञासा किया कि और कोई तो भूखा नहीं है इसी जगह, तो एक एक बार एक बाद आए अतिथि उनका, और बड़े विचित्र अतिथि हैं, कोई सोच नहीं सकते हम लोग ऐसा अतिथि, ये अतिथि हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उसकी ऊपर का जो ढंकन उसको देखते हैं, अपने मनुष्य जो शरीर ढंका हुआ है, जिसे कपड़े पहने हुए, कोई लाल पहने कोई पीले पहने कोई सफेद पहने हुए, हम लोग उसी को देखते हैं, लेकिन शरीर का अंदर जो चीज है उसको नहीं देखते हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय भी हम लोग को समझने के लिए बड़े मुश्किल है, उसको हम लोग अपने जिंदगी में ये नहीं करते, दूसरे अध्याय में सब कहते हैं दूसरे अध्याय तो बहुत ये चीज है, शरीर आत्मा तो ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जब हमारा ये बात आता है, हमको कोई एक थप्पड़ देगा बोले कि अरे आत्मा को तो थप्पड़ दिया हमको कहां दिया, ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्या, वो तो आत्मा को ही मारा है ना, हमारे शरीर को थोड़ी मारा, एक थप्पड़ दिया तो 2-4 थप्पड़ उसको लेते हैं हम लोग, क्यों देते हैं, हम लोग नहीं सोच रहे थे कि नहीं आत्मा को मारा है। तो रंतिदेव वो देख रहे थे उनके जो गेस्ट आए थे अतिथि वो कोई साधारण ये नहीं थे, दूसरे दूसरे सब देवता वो आए थे अलग अलग रूप में ये करके। तो रंतिदेव ने क्या किया, सबको उपचार किया, जबकि उनको खाने के अभी इतना भूख प्यास में है वो खुद तो उसमें वास्तविक कि ये जो भागवत में जो कथा है इसमें इसमें हम लोग को वास्तविक बहुत बड़ा ये मिलता है, भरोसा मिलता है जब हम श्रवण करते हैं। जब वो कर पाए तो हम क्यों निजड़ा एकादशी एक दिन नहीं कर पाएंगे, वो तो हमारे तरह के मनुष्य थे ना। इसमें बहुत बड़ा सहारा मिलता है क्योंकि वास्तविक भगवत भक्ति में ये सहारा बहुत बड़ा जरूरी है। हमको कोई सहारा नहीं मिला तो भगवत भक्ति हम टिके नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद ने देखिए इस संस्था में कितने सारे व्यवस्था किए सहारा के लिए, भगवत भक्ति में सहारा करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि सहारा का पहला चीज होता है कि संग, भक्तों का संग भगवत भक्ति का। क्योंकि कोई कोई बोलते थे अरे इसमें तो राधा कुंड में बाबा लोग सब अकेला अकेला भजन करते हैं, हम लोग कर सकते हैं, अकेला नहीं कर सकते भगवत भक्ति। भक्तिस्तु भक्त संगे न परिजायते, क्यों कहे, क्या वो पागल है क्या कह दिया से? भक्त संगे न परिजायते जब कहा गया तो हम बोले कि अकेला कर देंगे भक्ति। सोलह माला प्रभुपाद कहे ना, सोलह माला तो बहुत कमी है, अरे हम तो 64 माला करते हैं, कोई 1,00,000 करते हैं। कंपटीटर आगे आजकल हरिदास ठाकुर जी के, हम इतना करते हैं वो करते हैं। प्रभुपाद 16 माला कहे बहुत निम्न ये बता दिए ना, बहुत ये छोटे रकम का ये दिए प्रभुपाद ने, इतना बड़ा ये नहीं किए। लोग आजकल बहुत सारे एडवांस डिवोटी हो गए सो कॉल्ड, लेकिन देखिए वो भक्त संग ना परिजात जब कहा गया तो भक्त का संग में हम लोग करने से क्या मिलेगा, उनको सहारा मिलेगा हमको भक्ति में। हमारा भक्ति मार्ग में क्या क्या कमी है उसको कौन देखेगा, फिर कोई सहारा नहीं तो देखेगा कौन। हम तो आगे बढ़ गए, हम तो अपने मन में बैठ गए कि जैसे हम लोग का ये यहाँ पे एक ये कर रहे थे एक गुरु डिसाइपल कोर्स में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे एक उदाहरण दिए जाते थे। तो कोई बहुत कठिनाई करके एक पिलर के ऊपर चढ़ जाए जो पृथ्वी की सबसे बड़ा टावर होगा, अरे उसका निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई है नहीं उनके पास, उसको खाने कौन देगा, कौन क्या करेगा। उतना ऊपर तक चढ़ जाने के बाद वो देखेगा नहीं कि अरे और कोई पास नहीं है तो क्या करेगा, फिर वही भूखे मर जाएगा आदमी। तो हमारा भक्ति में ऐसे हो जाती है, हम लोग दूसरे को नहीं देखते। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का हर एक पन्ने में हम लोग देखते हैं कि वास्तविक ये जो कथा कहा ये दिए गए वास्तविक और श्री प्रभुपाद के जो तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए हैं तो उसमें हम लोग को एक ये मिलता है, बहुत बड़ा सहारा मिलता है कि ताकि हम लोग भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो कौन भक्ति कर सकते हैं, जो भगवान है, और भगवान कौन है, ये जीव कौन है, कहाँ पे है, इसके स्थान है, वो भक्ति क्या करेगा। लेकिन उसमें हमारा आशा है, आशावाद, इसलिए रूप गोस्वामी इसमें कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में ये आशावाद रहता है कि वास्तविक ऐसे ऐसे भक्त ने भक्ति साधन किए, इतने सारे कठिनाई आया फिर भी उसको पार करके भक्ति में आगे बढ़े, सफलता लाभ किए, तो हम उसी को आशावाद रखना चाहिए आशा। तब उसको धीरे धीरे जब गार्ड बनाएंगे तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से भक्ति कर सकते हैं। तो हमारा जीवन का वास्तविक ही लक्ष्य सार्थक होगा जब हम लोग ये भागवतों का हर एक श्लोक का हर एक श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य और भावार्थ पढ़ेंगे तो उसमें एक नया नया हमेशा सोच विचार आएगा। पर पहले तो हम लोग देखना चाहिए कि वास्तविक ही इस श्लोक में हमको भक्ति क्या मिलता है। इसको बाहर से दिखाया जाता है जैसे नर्क का, ऐसे उनका फल मिलेगा, जमराज दे देगा, लेकिन नरक बनना क्यों आएगा, हमारे सावधानी के लिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम तो कोई ऐसे गलती नहीं कर रहे ना। तो हम जब भक्ति कर रहे थे, गलती ऐसे हो जाए तो कहां हमारा भक्ति होगा, फिर जीवन का लक्ष्य कहां साधित होगा। तो इसलिए इस जो नरक का वर्णना किए हैं सुखदेव गोस्वामी ने, ये परीक्षित महाराज को जानकारी के लिए नहीं बताए। परीक्षित महाराज का कहां था कोई पाप कार्य। परीक्षित महाराज तो दूसरे के लिए सोचते हैं, क्योंकि साधु का लक्षण तो वही है, वो दूसरे के कल्याण के लिए हमेशा बात करते हैं। और हम लोग जो आएंगे बाद में, हम लोग भक्ति जाजन के लिए जो प्रयासी होंगे, उनके कल्याण के लिए। और बाहर के लोग उनकी क्या समझ में आएगा भागवतम। उनको आप बोलेंगे अरे ऐसे ऐसे नरक करने से ऐसे होगा, ये होगा। तो इसलिए ये नरक का वर्णन इसमें दिया गया। आगे ये तो 28वें जो नरक इसमें वर्णन दिए गए, कि कई कई हम लोग ये नरक का वर्णन जब प्रभुपाद जी करते थे, और कभी कभी भक्त लोग हमें सुनते हैं, ये करते हैं कि किसी के साथ हम चर्चा करते हैं बाहर के लोग, तो कभी बोलते यार नरक क्या है, कोई देखा है क्या, जिंदगी कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो ऐश करो, बस जिंदगी तो गुजर गए, तो बस मरने के बाद कहानी खत्म है ना। नरक कोई जाता है, कोई देखा है क्या, अरे कैसे स्थान किसी को पता ही नहीं, और कोई गया ही नहीं वहां पे किसका एक्सपीरियंस नहीं है जाने का, और जाएगा तो आएगा कहां यहां बताने के लिए। तो लोग उसको सो ये नहीं करते हैं। और कोई कोई लोग का कुछ धारणा ये भी नहीं रहता है। एक बार हम पुराण की कहानी पढ़ रहे थे, उसमें दिए गए थे छोटा सा कहानी, आप लोग नारद मुनि ऐसे एक बार कथा कर रहे थे ये नरक के बारे में, ऐसे ऐसे पाप कार्य करने से ऐसे ऐसे नरक भोगना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ये करना पड़ेगा। तो एक आदमी थे ऑडियंस में, वो जब खत्म हो गया तो वो पूछने लगे कि नारद मुनि आप बताइए, आप कह रहे कि ऐसे ऐसे पाप कार्य करने से ऐसे ऐसे नरक मिलेगा, और हम लोग तो ये सब करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नारद मुनि बोले कि ये तो शास्त्र में दिया गया, आपको नरक जाना पड़ेगा। वो नरक कैसे जगह है, तो नारद मुनि फिर बताए ऐसे ऐसे नरक में ऐसे ऐसे यंत्रणा मिलेगा, ऐसे ऐसे जगह ये चीजें हैं। तो वो फिर वो थोड़ा बुद्धिमान आदमी थे, बोले कि हमारा दोस्त जो हमारे साथ शराब पीने के लिए जाते हैं उसको भी यही दंड मिलेगा। हाँ उसको भी मिलेगा। और तीसरे दोस्त वो भी कह जाते हैं उसको भी मिलेगा। हाँ जी मिलेगा। और जो विश्वालय जाते हैं उनको भी मिलेगा। हाँ जाते हैं यहाँ उनको भी मिलेगा। तो आदमी बोले कि नारद मुनि आप गलत कह रहे हैं, जब ये लोग सब जाएंगे तो वहां पर मजा ही होगा ना, अरे वहां नरक के आप बोल रहे हैं कि ये बहुत कठिन है, ये कष्ट का जगह है, कष्ट भोगते हैं, यार कष्ट कहाँ भोगने का है, सभी तो जाके फिर वही कार्य करेंगे ना हम लोग का। लेकिन उनको बेवकूफ मालूम नहीं कि वास्तविक वहां ये काम नहीं कर सकता, ये नरक में जो वर्णन किए गए है ना। तो इसलिए वास्तविक हमारा भक्ति में आगे कैसे हम लोग पूर्ति कर सकते, वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य के लिए हम लोग इस मार्ग में आए, उसको सावधान देने के लिए वास्तविक ये जो नरक नरक का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी, उसको इसी भाव में लेना चाहिए। हरे कृष्ण।